प्रवचन पूज्य स्वामी शिला भक्ति वेदांत नारायण महाराज, वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर ब्लेस्ड दिस टेम्पल बाय भक्ति संत नारायण स्वामी महाराज इन वृंदावन. वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड बाय हिज दर्शन एंड हिज स्पिरिचुअल प्रवचन विच यू विल बी लिसनिंग सून. आज अपना मंदिर में परम पूज्य શ્રીલા ભક્તિ વેદાંત નારાયણ મહારાજ પધારે છે. આજે એક પ્રવચનનો ત્રીજો દિવસ છે અને સ્વામીજી વૃંદાવનથી પધાર્યા છે. તેમની સાથે તેઓનું ભક્તમંડળ પણ પધાર્યું છે. તેઓનું પણ આપણે સ્વાગત કરીએ. ભક્તમંડળ દેશ વિદેશથી પધાર્યું છે. અહીંના પણ ભક્ત છે, ભાઈ બહેનો છે, લેશના પણ છે, બાળમના પણ છે. તો સૌને આવકાર આનંદ થાય છે. તો સૌપ્રથમ પણ પૂજ્ય સ્વામીજીનું આપણે મંદિર તરફથી સ્વાગત કરીશું. તો આજનું સ્વાગત આપણા સહમંત્રી શ્રી રામભાઈ જીવતી કરશે. યશોભાઈ ના મંત્રો ત્યાં સાથે
ઓમ કસ્તુરી તિલકં લલાટ પટલે વક્ષસ્થળે કૌસ્તુભં ేణూకరే కంకణం సర్వాంగే హరిచందనం సువలితం కంఠేశ్చ ముక్తావళి గోపస్త్రీ పరివేష్టితో విజయతే గోపాలచూడామణి నమోస్తుతే ప్యాశ విశాల బుద్ధే ఉల్లారవిందా యతపాత్ర నేత్ర యేన త్వయా భారత తైల పూర్ణ ప్రజవాదితో
कीर्तन हो, गोविंद के नाम का कीर्तन हो, उस समय में सभी लोगों को मुख खोल करके कीर्तन करना चाहिए. उसे होता क्या है, रा कहने से रा मुख खुल जाता है और म कहने से म मुख बंद हो जाता है. तो जिस समय हम लोग राम कहेंगे तो वो जितने पाप हैं वो सब निकल जाते हैं और जो लोग कृष्ण नाम नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, उनके मुख में वो प्रवेश कर जाते हैं. और जब आदमी म कहता है तो मुख बंद हो जाता है. तो इसके मतलब जो लोग कीर्तन नहीं करेंगे उनके अंदर में घुस जाता है, ऐसा कहा जाता है. इसलिए सब लोगों को कीर्तन करना चाहिए ने? क्योंकि दिन में बहुत अवकाश कम मिलता है. दिन भर तो हम चटर और पटर में लगे रहते हैं संसारी कामों में. इसलिए जब कीर्तन भगवान कहो, विशेष करके मंदिर में संसार के समस्त कामों को भूल करके, सब बातों को भूल करके, उस समय दो मिनट के लिए चित्त को स्थिर करके भगवान का स्मरण करना चाहिए. अब चलिए. अभी मैंने कि अंग्रेजी के ध्वनि में कुछ कृष्ण का कीर्तन करें, जो ये पश्चात देश वाले लोग भी कुछ कीर्तन कर सकेंगे और आप लोग भी और हम लोग भी इनका सहयोग करेंगे पीछे से.
ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते दे प्रणमामि हरि। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेदे सत्यवत्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि से गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया त्वर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोष्मि।
हम लोगों ने श्रीमद्भागवत के प्रसंग में भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया। प्रहलाद महाराज जी के चरित्र से भगवत भक्ति के महात्म के संबंध में हम लोगों ने वर्णन किया। कोई मनुष्य जन्म लेकर भगवान नाम का कीर्तन नहीं करता तो यह निश्चित है तू अपने जीवन में कभी भी सुखी और शांति नहीं हो सकता। भले ही हम समझें कि हम बहुत धनी मानी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं किंतु मरने के समय में जिस समय के जम के दूत आएंगे उस समय क्या होगा, उस समय के लिए भी तो सोचो। इसलिए भगवान का नाम अनजान में जैसे तैसे छिकते समय में चलते फिरते उठते समय में भी भगवान का एक नाम भी यदि जीवन में यदि आ जाएगा तो उसका जीवन सार्थक है। लोग अधिक दिन जीवित रहेंगे उन लोगों के लिए भगवान की कथाओं का श्रवण भगवान का नाम का कीर्तन करना उनकी कथाओं का स्मरण करना उनकी लीलाओं का उनका पूजन अर्चन वंदनम ये सब करना चाहिए। कुछ समय निकालो ऐसा दिन नहीं रहेगा सब समय। कुछ व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालो वही तुम्हारे लिए पूंजी रहेगी और सब हाथ से निकल जाएगा। अपने जीवित रहते हुए जब तक शरीर में ताकत है जब तक इंद्रियां ठीक हैं तब तक भगवान की कथाओं का स्मरण करें। सुखदेव गोस्वामी जी ने नौम स्कंद तक की बड़ी रोचक और बड़ी सुंदर प्रभावशाली कथाओं का वर्णन किया। समय नहीं है यदि कम से कम तो एक महीना यदि समय होता तो कुछ कुछ मैं आउटलाइन दे सकता था। एक महीना कम से कम जो कथा 7 दिन की होती है वो कथा राजसी होती है किसी अपने लाभ के लिए नुकसान के लिए रोग को दूर करने के लिए लोग ऐसा करते हैं ये सबसे कनिष्ठ है। जो कथा किसी तरह से समझा बुझाकर जागते किसी लाभ और हानि के लिए नहीं कर अपने जीवन के उत्थान के लिए शांति और सुख के लिए किया जाता है एक महीने तक अच्छी तरह से वो उत्तम कहलाती है कथा। बिना लेन देन के मैं कथा कह रहा हूं और यदि मैं ये चाहूं ये लोग हमको कुछ पैसे दे जाएं तो वो बेच देना हो गया वो भागवत की कथा नहीं हुई। आजकल भारतवर्ष में ये व्यवसाय हो गया है। आप लोग वाणिज्य व्यवसाय नौकरी चाकर करके पैसे लाते हैं और वो भागवत कह करके कथा लाते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं, उस कथा का मूल्य वहीं पर समाप्त हो जाता है, पैसा लिया दे दिया। उस कथा के द्वारा आत्म कल्याण नहीं होगा। जो जाते किसी लाभ के बिना केवल आत्म कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कथा होती है, वही सात्विक कथा है। और जो कथा रोज प्रतिदिन अपने जीवन में उतारते हैं और सुनते हैं, एक दिन नहीं जीवन भर, निगम कल्पतरुर्गलितं फलम सुखमुखाद अमृत द्रवसंयुतम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभारुका। यहां तक कि मुक्ति हो जाने के बाद भी आत्मा अजर अमर है। यदि वैकुंठ लोक में भी चली गई आत्मा, गोलोक वृंदावन में भी गई, हे रसिक और भाव, संसार से मुक्त जन इस कथा का आस्वादन करते हैं। इस जगत के लोग नहीं आस्वादन कर सकते, थोड़ा थोड़ा रुचि हो सकता है किंतु आस्वादन नहीं कर सकते। जबकि इस संसार में जितनी हमारी कामनाएं वासनाएं हैं दूर ना हो जाएं, तब तो उस कथा में रुचि नहीं आ सकती। क्यों? एक तलवार, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, समझती हैं? एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी, एक ही रहेगी। या तो संसारिक कामनाएं वासनाएं रहेंगी, नहीं तो भगवान की लीला कथाएं रहेंगी। इसलिए संसारिक लोग इसका आस्वादन परीक्षित महाराज जी जैसा नहीं कर सकते, किंतु धीरे धीरे रुचि के साथ में इसका आदर के साथ में, श्रद्धा के साथ में श्रवण करना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित जी से कहा, 6 दिन होने जा रहे हैं, अब 7वां दिन आने वाला है, कुछ पानी पी लो। पानी पिएगा, कुछ फल का रस ला दूं, मंगा दूं? नहीं नहीं, मुझको जरूरत नहीं है। अब आप जो हरी रस मदिरा पान करा रहे हैं, निगम कल्पतरु का रस का जो है वो हमको जो दे रहे हैं, अब हमको संसारिक भूख और प्यास नहीं है। मैं अपना समय एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, आप भगवान की लीला कथाओं को आप मुझसे श्रवण करें। अभी उन्होंने कहा, निवर्त तर्षई उपगीयमाना औषधात् स्वत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् विरज्जेत बिना पशुघ्ना। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कहा, गुरुजी यह कहना चाहता हूं, निवृत्त तरसई उपगीयमानत, संसार के लोग बड़े दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं संसार में। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता जी हमारे शरीर में रोग नहीं है और हमको मरना नहीं है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में सब लोगों को कोई न कोई असुविधाएं संसार में है, बहुत से प्रॉब्लम्स है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। भारतवर्ष में बहुत सी समस्याएं यहां पर भी हैं, वहां पर भी हैं। अभी गायों की समस्या एक बड़ी भारी विकट समस्या बन रही है, गायों को मांस खिलाया गया, नहीं चाहिए था, उनका जो स्वभाव नहीं उसके विपरीत देने से वह चीज कुछ गड़बड़ी हो जाती है। भगवान ने गायों को, हिरणों को, मनुष्यों को मांस और मछली खाने के लिए, अंडे खाने के लिए नहीं बनाया, उनका बनावट ही नहीं ऐसा है। शेर का, भालू का, ये सब का वैसा है, मनुष्यों के लिए, गायों के लिए नहीं। गायों के लिए विपरीत भोजन दिया गया और उसका यह नतीजा हुआ कि उनका दिमाग गड़बड़ हो गया, कोई बीमारी हो गई। और आज ये प्लान बन रहा है कि ये लाखों गायों को बलि दी जाए, काट दी जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, नहीं तो आदमी मरेंगे। अरे मैं तो कहता हूं उन गायों को मारने की जरूरत, उनकी चिकित्सा की जरूरत है, बल्कि उनको मर्डर करने की जरूरत है, उनको कोर्ट में केस करके कि इनको किसने ऐसा किया। वो लोग दोषी हैं, गायें दोषी नहीं हैं। आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसको गला काट करके मार देंगे, उसकी चिकित्सा तो होनी चाहिए। गायों का क्यों दोष, उनको विपरीत भोजन दिया गया इसलिए वो गिल्टी हैं, वो अपराधी हैं जो उन गायों को दिया। गायें तो माताएं हैं, उसने स्वयं भगवान होकर के और इन गायों को माता के समान में पालन किया। यशोदा मैया ने कृष्ण को कहा बेटा तेरे लिए एक जूता बना दो जिससे कि तुम जाएगा तो कांटा नहीं लगेगा, और एक छाता दे दूं। कृष्ण ने मैया को कहा मैया गैया मेरी पूज्य है, मैं इनका नौकर हूं दास हूं, गायों के पैरों में जूता पहले दे और उनको छाता पहले दे और तब मुझको पहले पीछे से देना, गायें हमारी प्राण हैं। कृष्ण का कितना गौओं के प्रति यह था, जिस देश में जिस समाज में जिस राष्ट्र में गायों को गायों का आदर नहीं है, जिस देश में वेदों को तत्वों को जानने वाले प्रतिष्ठित वैष्णवों का आदर नहीं है, यहां पर भगवान का कोई आदर नहीं है, वेदों का शास्त्रों का रामायण और भागवत का आदर नहीं है, कृष्ण और राम का आदर नहीं है, शंकर जी का आदर नहीं है, इनके विपरीत चलता है लोग, विशेष करके गायों के विपरीत जो चलता है वो सभी राष्ट्र ध्वंस हो जाता है। कृष्ण ने स्वयं ऐसा कहा है गोसु विप्रेशु साधुसु, इनके प्रति यदि कोई बुरा आचरण हुआ वो राष्ट्र ध्वंस होने के कागार पर, ऐसा समझिए। गायें माताएं हैं, गाय चौपाया नहीं है, जानवर नहीं है, बल्कि हम वो चार पैर वाले जब चलते हैं तो हम लोग जानवर हैं। जो भगवान का भजन नहीं करता आदर नहीं करता, हमारे इन सब ग्रंथों का आदर नहीं करता। आप लोग जानते होंगे दिलीप रघुवंश में रामचंद्र जी के वंश में पहले हुए थे, उनको बेटा ही नहीं था, वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ ने कहा जी ठीक है, वशिष्ठ जी से ने कहा मैं अपनी कामधेनु गौआ को तुम्हारे लिए दे रहा हूं, तुम इसकी सेवा करो, इसको रोज स्नान कराना भोजन कराना इसके पैर दबाना, गाय को चराने के लिए जा रहा तुमको जरूर बेटा दे देगी। चराने लगे, कुछ दिनों के बाद में जब करीब एक वर्ष हो गया तो गाय को लेकर के खुद चराने के लिए गया राजा जपन में गए, इतने में एक सिंह ने आक्रमण किया और गैया को यहां पर पकड़ लिया। महाराज दिलीप धनुष बाण उठाया, अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा, एकदम ऐसे किया। सिंह डर गया, बोला जी से अरे हमको क्यों मार रहे हो, अतः तुम गैया को क्यों मार रहा है, अतः गैया तो मेरी भोजन है, मैं इसलिए मारता, तो मैं देश का राजा हूं, गैयों को ब्राह्मणों को वेद को शास्त्रों को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो तुम मुझे भोजन दे करके तब गाय को छुड़ाओ, चाहे तो क्या भोजन चाहता है, तो मैं तो रक्त और मांस खाने वाला हूं, मुझको रक्त और मांस चाहिए तो तुम मुझे ले लो इसके बदले। मैंने अपने को समर्पण कर दिया। बाघ ने सिंह जो था अपना स्वरूप दिखाया जो मैं धर्म हूं, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था और ये मेरी धर्म की पत्नी ये गैया है, जगत के विश्व की मैया है, तो मैया और हमसे अभी वर ले लो, क्या चाहता है, मैं एक सुंदर पुत्र चाहता हूं, अजय जाओ तेरे वंश में तुमका पुत्र ऐसा होगा जो तेरे वंश में आएंगे भगवान स्वयं आएंगे तुम्हारी इसके द्वारा गौओं की सेवा के द्वारा। गैया को एक जानवर मत समझो, जगत की जननी है, उनके रोम रोम में अनंत असंख्य देवता लोग भरे पड़े हैं। रामचंद्र जी का भी ऐसा ही, जब वनवास को जाने लगे वो गायों की सेवा करते थे रामचंद्र जी, लाखों गायें उनकी थी, सोचा जब तो मैं वनवास जा रहा हूं उन गायों की सेवा किसको दूं। उन्होंने एक ब्राह्मण आया, महाराज जी आप जा रहे हैं मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूं, क्या चाहते हो, मैं कुछ गाय चाहता हूं सेवा करने के लिए। ठीक, उन्होंने कहा तुम्हारा जो डंडा है इसको चलाओ उप जोर से, जहां तक फेंक देगा उसके अंदर में जितनी लाख गाय आएंगी मैं सब तुमको दे दूंगा। उसने डंडा उठाया और सरजू की तरफ में फेंका और वो सरजू के तीर पर जाकर के वो गिरा डंडा, इसके बीच में लाखों करोड़ों गायें सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे फुदकते हुए कुत्ते हुए बछड़ों के सहित और थान भरा हुआ दूध नई नई गायों को उन्होंने दान कर दिया। और भी देखते हैं गायों का शास्त्रों में गोवी अर्चयेत। गायों का अर्चन होना चाहिए, पूजन होना चाहिए। जिस घर में गायों का आदर नहीं है वो घर घर नहीं है। तो इसके लिए जिनके दिमाग में ये सब चीजें नहीं है, पश्चात्य देश में गायों को अपना भोजन समझने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये चीज बतलानी चाहिए। कोई एजिटेशन किया जाए, उनको समझाया जाए। जिसने दोष किया, जैसे कि गायें खराब हो गई, उनका दिमाग खराब हो गया, जैसे रोग फैल रहा है। आई मैं यहां आया, मैं रोज भारतवर्ष में देशी सुंदर गाय का थोड़ा सा दूध लेता था ठाकुर जी को देकर, या मैं नहीं लेता। मैं सोचता हूं उन गायों को उन लोगों ने न जाने विष क्या दिला दिया, और उनका दूध भी तो वैसा ही होगा, हमारा भी हृदय अपवित्र हो जाएगा। ये देश का अनिष्ट कर रहे हैं ये लोग, आधुनिक वैज्ञानिक लोग। सामान्य एक इसके लिए, इसलिए इसके लिए कुछ आवाजें उठनी चाहिए, गायों की रक्षा के लिए कुछ होना चाहिए। तो मैं अपने आप पुनः अपने प्रसंग में आ रहा हूं। देश में गायों की रक्षा नहीं, माताओं और बेटियों की रक्षा नहीं, जिस देश में पूर्वजों का आदर नहीं, बूढ़ों लोगों का आदर नहीं, वो देश दिन अधिक दिनों तक वो राष्ट्र नहीं चल सकता है। इसलिए उनका आदर होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं निवृत्त तर्षई उपगीयमानात् बहुसधा श्रोत्रि मनोभिराम। जगत में सभी लोग दुखी हैं, बहुत से जगत में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी कठिनाइयां हैं इस जगत में रहते समय। संसार में जो मर और जी रहे हैं, जननपि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम, यही भाव रोग है। सभी इसमें भोग रहे हैं। यदि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति मिले निवृत्त तर्षई उपगीयमानात्, संसार के भोगों से परम विरक्त हैं, जिनको संसार का कोई चीज का लोभ नहीं, भगवान में परम अनुरक्त हैं, ऐसा कोई व्यक्ति यदि मिले, कैसा? सुखदेव गोस्वामी जैसा, नारद जी जैसा, वशिष्ठ जी जैसा, सुखदेव गोस्वामी जैसा। तो निवृत्त तर्षई, जिनकी भूख प्यास मिट चुकी है, किस चीज की? संसारिक वासनाओं और कामनाओं की भूख मिट चुकी है, उनको इस संसार से कुछ लेना नहीं, ऐसे परम विरक्त भगवान के रसिक, हरि कथाओं के रसिक, परम भाव यदि मिले तो उन मुख से भगवान की कथाओं का सुनना ही भौरों के लिए परम औषधि है। इससे बढ़कर के और कोई दवा नहीं है। और इसका मूल्य क्या है? अभी डॉक्टर के यहां थोड़ी सी कुछ लेकर के शिकायत जाएंगे, कहीं से एक कितना डॉलर या इतना पाउंड अभी जमा करो, तब अभी नंबर में आएगा, एक सप्ताह का समय चाहिए। जगत का कुछ भी मूल्य नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन संसारिक कोई कामना वासना है नहीं, केवल बड़े दयालु हैं। इनके मुख से जो भगवान की कथाएं निकलती हैं वो भवरों के लिए परम औषधि है। कैसी औषधि? औषध कड़वी होती है, शुगर कोटेड होती है, कुछ गर्मी भी करती है, कुछ रिएक्शन भी करेगी, किंतु ये कथाएं जो है ये कोई भी रिएक्शन नहीं करती। सुनने में भी परम मनो, अभी सुना ना, हरे कृष्ण ने किया, कितना सुंदर, सुनने में भी मधुर। और यदि उसका अर्थ का ज्ञान हो और हृदय में यदि जाए कृष्ण की कथाएं, तो हृदय को निर्मल कर देंगी और जन्म जन्मांतर के लिए हम सुखी और शांति हो सकते हैं। ऐसी ये कथाएं, जो इन कथाओं का सेवन नहीं करता, जो इन कथाओं को श्रवण नहीं करता, तो उनके लिए गति क्या कर रहे हैं? कौ उत्तम श्लोक गुणानुवादात। जो लोग ऐसी कथाओं का श्रवण नहीं करते, मनुष्य जन्म लाभ करके भी विरजित बिना पशुकुना, वही आत्मघाती अपने को सुसाइड करने वाले लोग जो हैं, वही इन कथाओं को नहीं सुनते। जो लोग पशुओं का वध करते हैं, जो लोग दूसरे का हत्या करते हैं, वो हत्यारा नहीं है उतना, जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनते हैं, जन्म जन्म उनका बिगड़ जाता है। ये मनुष्य जन्म 84 लाख जोनियों के बाद में मिला है। अभी साइंटिस्ट लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, एक दिन समझेंगे जहां ये बात ठीक है। पुनर्जन्म को वो नहीं मानते थे, अब पुनर्जन्म को भी मानने को बाध्य हैं। पहले पुष्प विमान को नहीं मानते थे जयराम वहां से कैसे चले आए, अब तो वो मान रहे हैं। एक एक विमान पर 300-400 आदमी जा रहे हैं, अब तो मान रहे हैं। पहले आकाशवाणी नहीं मानते थे, अब आकाशवाणी भी धीरे धीरे मानने लगे। हमारी भारतीय जो वैदिक जो बातें थी, अब धीरे धीरे विश्व के लोग, विश्व के वैज्ञानिक यदि और अधिक रिसर्च करेंगे तो हो सकता है कि कुछ आगे बढ़ जाएं, आत्मा के संबंध में कुछ विचार कर सकें। अभी ये विज्ञान विज्ञान नहीं है, अभी अज्ञान है। जिस समय आत्मा के संबंध कर सकेंगे, शरीर कैसे चलता है, क्यों चलता है, इसमें इच्छाएं कहां से हुई, मरने के बाद में इच्छा कहां चली जाती है, चर्चा होना चाहिए। हम कैसे सुखी हो सकते हैं, विश्व बंधुत्व कैसे आएगा, लोगों के प्रति प्रेम कैसे आएगा, इस पर रिसर्च होना चाहिए। नहीं? हम जगत को बर्बाद कर देंगे, इसके लिए नहीं, इसके लिए वो तो आदमी तो मरेगा ही, मर जाएगा अपने आप, उसको बम से क्या उड़ाने की जरूरत है। ऐसा कोई चीज आविष्कार कीजिए, एक दूसरे प्रेम बंधे, विश्व बंधुत्व की भावना है। ये सब नहीं हो रहा है, इसलिए परीक्षित महाराज जी कहते हैं जी अपनी कथा को बंद मत करें, आगे हमें सुनाइए ये कथा। तो जो लोग आत्महत्या करते हैं वो आत्महत्यारे नहीं है, जो भगवान की लीला कथाओं का श्रवण नहीं करते, आदर नहीं करते, वो आत्मघाती है। इसलिए प्रभु आपसे ये प्रार्थना है कि आप अपनी हरि कथा को चलाएंगे। अब हम दशम स्कंध में आ रहे हैं, समय नहीं, इसलिए मैं चाहता था कि थोड़ी सी दशम स्कंध की कथाओं को आप लोगों के कानों में स्पर्श कराऊं। कृष्ण ने जन्म लिया, भादों की अष्टमी में जन्म लिया। कहां लिया जन्म, लोग कहते हैं कि मथुरा में कंस के कारागार में वो प्रकट हुए, ये बात ठीक है प्रकट हुए, किंतु जन्म नहीं लिया हुआ। जन्म कहां लिया, यशोदा के कोख से गोकुल में जन्म लिया, जिसमें यहां पर प्रकट हुए जैसे रामचंद्र जी के लिए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी फिर अस्तुत जोरी ने? हाथ जोड़ करके वे स्तुति करने लगे। वैसे कृष्ण 16 वर्ष के बच्चे जैसे घूंघराले केश, बड़ा ही सुंदर दिव्य चेहरा, दांत पूरे, अलंकारों से इत्यादि, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीताम्बर पहने हुए प्रकट हुए। ऐसा कहीं जन्म नहीं होता, इसलिए प्रकट हुए भगवान। वहां पर भगवान है, किसी के जोनी से नहीं निकलेंगे, प्रकट हुए। और ठीक उसी समय में गोकुल में एक ही साथ में यशोदा जी के गर्भ से निकले, ठीक मनुष्यों का जैसा होता है। वहां पर नाड़ी लगी रही माता और पुत्र में, मथुरा में जन्म संस्कार नहीं हुआ, नाड़ी नहीं कटी, ब्राह्मण आकर के पवित्र नहीं किया, उनको स्नान नहीं कराया गया, किंतु ये सब काम कहां हुआ। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात आह्लादो महात्मना, नंद को आत्मज, आत्मज माने आत्म वही जायते पुत्र, आत्मा से जो उत्पन्न होता है। कृष्ण वहां पर प्रकट भये, कैसे, यशोदा माँ के गर्भ से निकले, इसलिए वहां पर जन्म लीला हुई। और यहाँ पर भगवान की आविर्भाव प्रकट लीला हुई, जन्म लीला यहाँ पर नहीं। यही कृष्ण जाकर के वसुदेव जी ले गए, और वहां पर जो नंद बाबा के यहाँ जो कृष्ण जो जन्मे थे उनमें जाकर के ये मिल गए, एक हो गए। लोगों ने समझा नहीं, क्यों, नारद आदि ऋषियों ने इस चीज रहस्य को समझा। इसके बाद में वो बड़े होने लगे, पूतना आई पांचवें दिन की छठे दिन मारने के लिए कंस की तरफ से। पूतना सबसे पहले अपवित्रता होती है, स्नान नहीं करना, मैल सब समय गंदे कपड़े रहना, ये भी एक अपवित्रता, किंतु ये नहीं, अधिक नहीं है। भीतर का दिल जब यह अपवित्र है, लोगों से क्रोध देश हिंसा, ये बड़ा भारी मैल है, ये तो सावन देने से निकल जाएगा, कि तो भीतर का ईर्ष्या द्वेष। आज राष्ट्र विश्व में ऐसा कोई नहीं जो एक दूसरे से नहीं डरता, भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को शत्रु समझ रहे हैं। उसी तरह से विश्व में किसी का किसी पर भरोसा नहीं, परस्पर प्रीति नहीं, इसलिए ये सब भीतर की मैल है। ये मैल सावन से नहीं जाएगा, इसका अंधकार सूर्य से और चंद्र से नहीं जाएगा, ये हरि भजन और हरि नाम से ही होगा। इस चीज को समझने की चेष्टा की जाए, है ना। तो पूतना आई अपवित्र, कैसे बीस लेकर के इस तनु में आई। कृष्ण ने उसको देखते ही आंख बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिया? हाँ, ये माता का बीज बना करके यशोदा जैसे आई है और बेटा बेटा कर करके मुझको गोदी में उठा रही है, किंतु नियत क्या है? कृष्ण को मार डालेंगे, इसलिए ये भक्ति नहीं। इसी तरह से जो लोग रुपया पैसा प्रतिष्ठा चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, वाइफ वाइन और वेल्थ चाहते हैं, ऊपर से गुरु बने हुए हैं, ऐसे गुरु से कोई संबंध नहीं। जो लोग सचमुच में भगवान के निस्वार्थ सेवक हैं, वे लोग संसार का कुछ उपकार कर सकते हैं। इसलिए पुतना बन करके मैया आई कृष्ण को मारने के लिए, और जब ही स्तन में उनको दिया, कृष्ण उसके प्राणों को भी खींच लिया, किंतु कृष्ण उसे लगे रहे, पुतना करिए, छोड़ो 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 छोड़ो, मैं मरी मरी मरी। जब देखा नहीं छुड़ा सके, 10,000 हाथियों का बल उसके शरीर में था, उसने ऐसे कृष्ण को धक्का दिया, छोड़ो, नहीं छुड़ा सकी। कृष्ण अनायासी उसके मुख को उसके स्तन में लगे रहे। यशोदा मैं कैसी? कृष्ण गोदी में बैठे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध जल रहा है, उफन रहा है। यशोदा जी ने कहा बैठो, नहीं बैठा। उसने मुख से पकड़ लिया और बंदर की तरफ में हाथ से भी पकड़ लिया, पैर से भी पकड़ लिया। यशोदा माँ को छोड़ेगा नहीं, और यशोदा ने एक धक्का दिया, ए हट। बस वो पर ब्रह्म का जो सारी शक्ति धरी रह गई और उड़ लेकर के बैठा दिया और चली गई। ये भक्ति का बल है। पुतना नहीं छुड़ा सकी, वो कंस के पास में भैया मुझे बचा, वो चली, किंतु बीच में ही वो गिर पड़ी और मर गई। इसी तरह से कृष्ण और आगे लीलाएं सब करने लगे। एक गाड़ी में दूध दही घी सब रखा था। कृष्ण के जन्म का दिन था। यशोदा जी पकवान और पूरी बनाने में लगी हुई थी और उनकी सहेली आ रही थी और बधाई के कीर्तन हो रहे थे। उस समय में शकटासुर कंस का भेजा हुआ असुर अपना शरीर छिपा लिया हवा जैसा और गाड़ी में प्रवेश कर गया शकट में। कृष्ण उसके नीचे झूल रहे थे पल्ले में और छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के साथ में खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। और उधर यशोदा मैया अपने रंग में रंगी हुई थी, कीर्तन कर रही थी, और सब सहेलियां थी, कीर्तन करते हुए अपने घर का रसोई का काम सब कर रही थी। गोविंद दामो धर्माधवे, गोविंद दामो धर्माधवे, गोविंद दामो धर्माधवे, दुखले संघट तंडुलांश संघंटयंतो मुसलई प्रमुख, गायन्ति गोप्यो जनिता अनुराग, गोविंद दामो धर्माधवे, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो। यशोदा जी के स्तन से दूध भरा था, अपने आप कृष्ण को स्मरण करके और तन्मय होकर के अपने कामों में लगी हुई। और शकटासुर रास्ता देखता हुआ आया कृष्ण को वध करने के लिए, पल्ले में झूल रहे थे गाड़ी के नीचे। गाड़ी के ऊपर में अपना सारा जोर लगा दिया और गाड़ी धीरे 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 जमीन में धसने लगी। और कृष्ण खेल रहे थे बच्चों के साथ में। कैसे खेल रहे हैं? कभी चूस रहे हैं अंगूठे को, कभी पैर का अंगूठा मुख में दे दिया, कभी ऐसे 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 पैरों को उछाल रहे हैं, कभी हाथों को उछाल रहे हैं। और इतने में वो ठोकर लग गई। जब गाड़ी नीचे आया तो पैर का ऐसे जो कर रहे थे वो लग गई ठोकर, और गाड़ी झट गई और उलट गई और उसके धूरे और ये सब कुछ टूट फूट गया और वो असुर मिल करके गिर गया। यहां पर गाड़ी क्या है, शकटासुर क्या है, पटी शक्षासुर। गाड़ी कोई चीज रखी जाती है, वेद उपनिषद सबका ज्ञान है, बहुत इंटेलिजेंस है, वी नो ऑल वेद उपनिषद शास्त्र भागवत रामायण पुराण एंड वी कैन रिसाइट, बट नथिंग, वी आर नाउ फॉलोइंग नथिंग। हम लोग उसको करते नहीं है, भगवान का नाम नहीं करते, सब जानते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, कर्म और ज्ञान में लगे हुए दिन रात अपने कर्मों में व्यस्त है। कुत्ता बहुत व्यस्त है, जा रहा हुआ बाबा, अरे भाई कहाँ जा रहा है, अरे बोलने की फुर्सत नहीं है, कुत्ता महाराज कह रहे हैं बोलने की फुर्सत नहीं है भाई, मैं बहुत व्यस्त हूं। चलते चलते गए, दूर पर एक माइल का पत्थर पड़ा हुआ था, उस पर जाकर के पैर उठाया, पेशाब किया, फिर लौटे, बड़े व्यस्त होकर के चले। उनका यही काम है, व्यस्त है। इसी तरह से हम लोग किस लिए व्यस्त हैं, किस लिए नहीं जानते, ये किस लिए व्यस्त हैं। इसलिए ये है भार, शास्त्रों का, कर्मों का, ज्ञान का भार हम ढो रहे हैं, और सहज रूप में जो भगवान का नाम होना होता है उस भगवान का नाम को नहीं करते। 5 मिनट निकाल करके अपने व्यस्त जीवन से भगवान की कथाओं को रोज सुनेंगे, भगवान में अपने चित्त को लगाएंगे, जिससे हमारा भविष्य सब कुछ बन जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं करते। इसलिए वो शकटासुर वो कौन सा है, सब कुछ जानते हैं, भार वहन करते हैं, किंतु भगवान का भजन नहीं करते। वट इज शकट मीन करेज, कॉर्ड, ज्ञान, कर्म, योग, तपस्या, व्रत, होम, श्रद्धा, संयम, दान, ऑल आर यूटेंसिल वी आर गेटिंग ऑन दिट कार्ड, बट ऑफ नो यूज इफ यू डोंट रिमेंबर कृष्ण, चांट कृष्ण, हैव नो भक्ति जोग टू कृष्ण, एवरीथिंग इज लाइक दिस एंड कृष्ण विल
किप देम,
वो सबको उलाट पुलाट करके रख देगा। इसलिए शकटासुर का वध हुआ, और भी बहुत से दूध हुए। कृष्ण अब कुछ चलने लगे हैं, घर के बाहर आ रहे हैं, बहुत नटखट, बहुत नटखट बच्चा, श्यामला सुनलिनी मूरत, जसोदा मैया ने यहाँ पर मयूर का पंख बांध रखा है, छोटी सी बांसुरी उसने ले ली है, अलबेला सा लड़का। जब घर से बाहर निकलने लगा, बलदेव और सखाओं को लेकर के गोपियों के घरों में घुस जाता, और रखा हुआ मक्खन लेता और सबको देता, कभी उसके घर जाता, गोपी जितनी भी गोपियां थी, इस जन्म का संस्कार नहीं, पूर्व पूर्व जन्मों का संस्कार था, उन्होंने तपस्या की थी, जब भगवान कृष्ण हमारे घर में आए, मक्खन चोरी करें, हमारा दिल चोरी करें, मक्खन नहीं, लोगों का दिल चोरी करने के लिए जाते थे। इसलिए कृष्ण गए, क्या किया, उसके बेटे से कहा, जे बेटा तुम जाकर के मैया से कहो जो तुम्हारा बछड़ा खुल गया है और गाय का दूध पी रहा है, अपने आप खोल दिया, और उसके बेटे से कहा जो कृष्ण का मित्र था, जाकर के मैया से कह दो अरे दूध पी गया गया सब। मैया दौड़ी, दूध को रक्षा करें, घर में घुस गए हजारों बच्चे सब और मक्खन खाने लगे, किसी गोपी ने उनको पकड़ लिया, अरे भाई क्यों तुम चोरी करने आया, कहिए मैं तो समझता था कि मेरा घर है, तेरा घर है, मैं तो यही समझता था कि मेरा, गोपी हंसने लगती और वो हाथ से छोड़ करके चले जाए। कभी यदि पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया, तू चोरी क्यों करने आया, तो मैं चोरी करने नहीं आया था मैया, तो किस लिए आया था, मेरा बछड़ा गुम हो गया, गुम है समझते हैं, कहीं खो गया मेरा बछड़ा, मैं बछड़ा खुद ढूंढ रहा था, तो तेरा बछड़ा क्या हमारे इस गगरी में जिसमें कि मक्खन और घी है इसमें घुसा हुआ है, हाँ मैया इसी में वो कूद पड़ा था, कैसे देखें, हाथ लगाया और उसमें से एक मार्बल पत्थर का बछड़ा जो था खिलौना निकाल, देखो ये मेरा बछड़ा है इसमें कूद गया था, मैं थोड़े तुम्हारा मक्खन खाने नहीं आया था। एक दिन एक गोपी ने पकड़ लिया चोरी करते हुए, कह दिया चलो तुम्हारी मैया से कहूं, तुम्हारी मैया मानती नहीं है कि तुम्हारा बेटा चोर हो गया, पकड़ करके ले गई सवेरे भोर में, जब वहां गई जसोदा जी से कहा अरे देखो जसोदा सखी जसोदे तेरा बेटा बड़ा चोर हो गया और हमारे घरों में चोरी करता है, बड़ी प्रसन्न है किंतु फिर भी उलाहना दे रही है, जसोदा को ये पता नहीं है और कैसी कैसी ये सुंदर सुंदर मनोहारी लीलाओं को करता है, इसलिए जसोदा जी को बतला तू भी तेरा चख, इसलिए गई कहने के लिए। जसोदा मेरा लाला तो सो रहा है, हमारा तो लाला नहीं है, जरा देखूं इसका मुख देखूं, तो जरा मुख खोला तो देखा जो उसी का लड़का जो गोपी पकड़ करके लाई, और कृष्ण वहां से मैया 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 देखो हमको झूठ मूठ का ऐसे कहती है, और मैं जरूर जाऊंगा इसके घर में चोरी करने के लिए, ये परब्रह्म है, उनको चोरी की जरूरत नहीं है, मक्खन की जरूरत है, उनको प्रेम की जरूरत है, प्रेम के भूखे ये नंदलाला है, इसी के लीला करने के लिए आए हैं। अब वो 3.5 वर्ष के हो गए, जसोदा जी अपने सब नौकरानियों को छुट्टी दे दी, दासियों, हमारा बेटा चोरी करता है मक्खन, तो इसका मतलब यह है हमारे घर में मक्खन मीठा नहीं होता, आज अच्छी अच्छी गायों को पद्म गंधा, कमल गंधा इत्यादि गायों का दूध अपने हाथ से निकालूंगी और अपने हाथ से जमाऊंगी गर्म करके, और जब दधी हो अपने हाथ से आज मथूंगी और मत करके कृष्ण को जो अच्छा सा मीठा मक्खन होगा ताजा मैं खिलाऊंगा। देखे कैसे दूसरों के घर में जाता है, इसलिए बच्चा जाता है। झट दूध निकाला, शाम को उन्होंने गर्म किया, उसमें कुछ दे दिया, वो जम करके सवेरे एकदम दही हो गई, इतना मोटा मलाई पड़ गया उसके ऊपर में, मोटी मलाई। और अपने आप यशोदा मंथन करने बैठी, एक स्तंभ था ऐसा खंभा, उसमें रस्सी लपाट दी और मंथनी होती है उसमें लगाया, और घर इस प्रकार से करने लगी। बहुत ही सुंदर, कृष्ण की मैया ना कितनी सुंदर होगी, बेटा इतना सुंदर तो मैया जरूर सुंदर होगी, सुंदरी। रेशम की वस्त्र पहने हैं, अंग उनके भीतर से झलझल कर रहे हैं, इतने अद्भुत, कमर बहुत पतली सी, पस्तक छल चौड़ा, और मथने से श्वेत बिंद आ रही है, मानो ये लड़ियां गिर रही हैं, मोती की लड़ियां झर रही हैं, और गा रही हैं तन्मय होकर के। क्या गा रहे हैं? वही गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। जब मथ रही है उस ध्वनि निकलती है मानो मृदंग का पिछला भाग, और हाथ में सुनने की जो चूड़ियां कंगन है वो झनझन जो बज रही है मानो वो मजीरे हैं। मृदंग क्या कहता है? धिक्तान धिक्तान, धिक धिक्तान, मन धिक्कार है वो, फाइव टू देम, फाइव फाइव। जो कृष्ण का भजन नहीं करते उनके लिए धिक धिक तान, उनको धिक है। जो कृष्ण का भजन नहीं करते, खाने पाने और जगत में कामों में मस्त हैं, नहीं जानते कि मृत्यु यहां पर मंडरा रही है, उनको धिक है, उनको धिक है। तो इस तरह से वो मृदंग जानू बज रहा है, और बड़ा सुरीला कंठ कोयल को भी मात कर दे, ऐसा सुरीला कंठ, और वो तन में होकर के गा रही है, कृष्ण सोए हुए है पलंग पर। सवेरे कर रहे, कौन है ये? त्रिलोकी के भी ईश्वरों के ईश्वर, सर्व कारण कारणम, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, हिज एंडलेस, नो आदि एट ऑल, कोई आदि अंत नहीं जिनका, ऐसा वो परब्रह्म जो परमात्मा और परब्रह्म का भी मूल कारण है, जो समस्त अवतारों का मूल कारण है। आज वो छोटा सा बच्चा नंग धड़ंग मैया को खोज रहा है, मैया कहां गई, कित गई मैया, कहां गई मैया, उतर कर देखा बहुत दूर दधि मंथन करके एकदम रंग में रंगी हुई है। रोना, बच्चों का अस्त्र क्या है? रोना। यदि कोई काम नहीं मिलेगा जो चाहता है, या मैया को नहीं मिलेगा तो जोर से रोएगा, रोएगी, रोना आरंभ कर दिया। मैया सुन नहीं रही, पलंग से किसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से उतरे, और उतर करके फिर गए। थोड़ी देर के बाद में मैया के पास में पहुंचे, जोर से रोने लगे, तभी मैया ने नहीं सुना, झट उसका एक हाथ से सिर पकड़ लिया और एक हाथ से मथनी पकड़ ली। मैया ने देखा कौन आ गया, देखा अरे ये तो कन्हैया, लाला है लाला, बस लाला को झट को ही मिले, मथनी बंद कर दिया और बेटे को लेकर के गोदी में बैठा लिया, और अंचल से उसको ढक लिया और स्तन मुख में दे दिया, अपने आप स्तन से दूध झर रहा, इतना झर रहा है दूध उनके स्तन में है, खीर सागर इत्यादि सभी उसी से प्रकट हुए हैं, समस्त विश्व पी ले तो भी कमेगा नहीं। और कृष्ण का मुख और पेट कैसा है? असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड उनके पेट में समा सकता है, तो कृष्ण का कभी भूख भी नहीं होगी बंद, और यशोदा मैया के दूध से जो स्तन से दूध निकाले वो भी बंद नहीं होगा, तो सब समय ये दूध पीते रहेंगे। दूध ने देखा वहां से जो उबल रहा था वो आग में गिर रहा, ये तो जसोदा जी का दूध कभी समाप्त नहीं होगा, इसकी भूख भी बंद नहीं होगी, तो यही पिएगा तो हमको कब पिएगा। इसलिए वो सोचा जाग में जल मरना ही अच्छा है। यदि भगवान की सेवा में हमारा नहीं लगता है यह शरीर, किस काम का, बेकार का, कोई काम का नहीं ये शरीर, कृष्ण की सेवा होनी चाहिए। यदि हमारा तन मन वचन भगवान की सेवा में नहीं लगी तो बेकार का, इसलिए दूध उफन करके अपने प्राणों को आग में दे रहा है। नहीं 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 ऐसा नहीं, मैं अभी दूध पिलाना बंद रहा, तुम्हारी सेवा पहले हो, ये गुरु काम का है, गुरु का काम है। अपनी सेवा छोड़ करके बस दूसरों को भी सेवा में लगा लेता है। जो सदा दे जोड़ करके पानी का छिटा दिया और उसको शांत किया, नहीं नहीं अभी अभी तुमको अब कृष्ण की सेवा में लगाती है। और वहां से लौट करके आई तब तक देखा क्या, न जाने कहां चला गया। और दधि का जो मंथन हो रहा था उसमें से सारा वो पिघल करके और वो नीचे गिर रहा है। कृष्ण ने देखा मेरी भूख शांत नहीं और मैया में छोड़ करके चली गई, ठीक है, दांत कड़मड़ी करने लगे जैसे छोटे से बच्चे करते हैं, ठीक लीला करने लगे नरवत मनुष्यों के समान। और एक लोढ़ा उठाया और उसके पीछे में नीचे की तरफ में छेद कर दिया, ठक, और वो फूट गया। ऊपर में जरा मोटा होता है ऊपर में, पहले तुमसे धक्का दे करके गिराना चाह, किंतु नहीं गिरा सके, गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लिया 7 दिनों तक, और एक छोटी सी मटकी उसे नहीं हट सकी। या ऐसी लीला है, भीतर से मारा तो वो सब गिर करके दूध गिरने लग गया, धीरे धीरे सब बह करके हो गया। कृष्ण देख करके बड़े आनंदित हुए, जैसे बच्चे होते हैं, वाह वाह दूध कैसे धारा से निकल रहा है ये। और इसके बाद में रेंगते हुए उसके ऊपर में चलते हुए एक घर में पहुंचे जहां पर कि छीके पर मक्खन और दधी रखी थी। एक उखल को लिया, उलाद करके उस पर चढ़ गए और चढ़ करके और लेने लगे, बंदरों को देने लगे, कौओं को देने लगे और अपने भी खाते। कौओं को क्यों दिया, काक भूसुंडी के ये बेटे हैं, और बंदरों को इन्होंने रामचंद्र जी की लीला में हमारी बड़ी सहायता की थी, उसमें मैंने कुछ इनको नहीं दिया, अब इस जन्म में देंगे। मैया आई देखी, अरे कहां गया बेटे। से मैया चतुर होती है, उसने देखा जैसे इसके पैर के छाप लगे हुए, घर के अंदर में गई, देखा जैसे उतार रहा है, बंदरों को बांट रहा है, चुपके से भीतर में गई, एक बेंत की ले लिया। जब वो निकट में पहुंची पकड़ने के लिए, ऐसे ही त्यों हुई, वहां से देखा जो कौए भागने लगे और बंदर, बस झट वो सुरत करके भागे, राजमार्ग पर चलने लगे, भागने लगे। अरे आज तो हमारे सब लोग चले गए हैं गोचारण में, अभी कोई है नहीं, मैं तुम्हें पकड़ूंगी जरूर, आज मैं दंड जरूर जरूर दूंगी। पीछे दौड़ने लगी, किसी को पकड़ने के लिए जो भाग रहा है उससे अधिक हमको दौड़ना पड़ेगा, इसलिए कृष्ण जितना भाग रहा है उससे दुगना दौड़ना पड़ेगा जसोदा मैया को। किंतु जसोदा जी का शरीर कुछ स्थूल है, कमर बड़ी पतली, कभी दौड़ने का अभ्यास नहीं, ये भागने लगा छोटा सा बच्चा, कभी इधर से कभी इधर से भागने लग गया। जसोदा आज तुम्हें जरूर पकड़ूंगी, उसने एक लठिया बेंत से उठाया और ऐसे मारो। कृष्ण का, अरे मैया मत मुझे मारो, क्यों तुमने चोरी की। मैंने तो चोरी नहीं की। किसने चोरी की, जरूर तुमने चोरी की। तो नहीं मैया हमने चोरी नहीं की, ये तुम्हारे वंश में कोई चोरी किया होगा, हमारे वंश में कोई चोर नहीं, चोर माने उनके वंश में जसोदा जी के मैया के बाप के वंश में किसी का नाम चोर गोप था, ये तेरे वंश में होगा, मैंने तो हमारे वंश में चोर नहीं है। तो ये क्यों तुमने मटकी फोड़ी, क्यों। मैंने तो फोड़ा नहीं मैया। किसने फोड़ा, अरे तेरे पैर में सोने के जो करले है ना मोटे मोटे, जब तुम मैं भागी दूध को बचाने के लिए तो वो दौड़ते समय में वो लग गया उसमें और वो टूट गया। अरे भाप झूठा मक्का धूर्त है तो फिर दौड़ी जिसको जोगी लोग, कौन जोगी, सनक सनंदन सनातन शंकर जी, ऐसे बड़े बड़े जोगी लोग पवित्र होकर के लाखों वर्ष तपस्या करके मन को पवित्र करके भी जिनको पकड़ नहीं सकते, अपने हृदय में जिनका ध्यान नहीं, जिनके चरण कमलों का कर सकते, आज वो जिसको जसोदा जी गोपी उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही है और साक्षात रूप में जाकर के पीछे से, अरे देखो मारा, और जब ही ऐसा किया कृष्ण ऐसे खड़े हो गए, बस पकड़ लिया पीछे से। कृष्ण मैया मुझे मत मार, अरे जरूर मारूंगी। हाथ में ऐसे बेंत ले लिया, दाएं हाथ में या बाएं हाथ से उनको पकड़ लिया और कहते ऐसे मारू, फिर छिप जाते। रुदंतम मुहुर नेत्र जुगमंग मृजंतम,
करांभोज जुगमेन सातंक नेत्र मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ सितग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमा जसोदाभियोलु खलाधाम मानम परामृष्टमत्यं ततोद्रोत्त गोप्या नमामि ईश्वरं सचिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमान
जसोदा जी जाकर कृष्ण को दौड़ करके पकड़ा। कृष्ण रोने लगे, आंखों में काजल और वो गिरने लगा, आंखों के नेत्रों में गंगा जमुना की धारा प्रवाहित। एक तो काला अपने ही और उस पर काले काला पानी, काजल का पानी, और शिशक शक्षा कर रहे, लंबी लंबी श्वास ले रहे, गले में त्रिवली है, सोने का हार वो भी चंचल हो रहा है, कानों में कुंडल वो भी दोदुल्यमान हो रहा है, अद्भुत रूप, रोना भी कितना सुंदर, बोलनम मधुरम चलनम मधुरम, उनका कृष्ण का अखिलाधि मधुरा पते अखिलम मधुरम, बोली चलनी हंसना उठना बैठना चोरी करना सभी कुछ, उनका रोना भी बड़ा अद्भुत मधुर। ये नहीं मारूंगी तो नहीं, बे छोड़ दिया मारूंगी, किंतु तुम्हें बांध कर रखूंगी, क्यों कहीं यदि तू भाग गया तो जमुना ने निकट में है, और कहीं तू यदि भाग करके गया यदि डूब मरा तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पहले तेरा ये क्रोध शांत करूंगी, फिर तुझे दूध पिलाऊंगी, तब तक मैं घर का काम कर लूं, दधी मथ लूं, घर को साफ सुथरा कर लूं, तब तक उनको बांधने के प्रयास किया। किसको बांध रही हैं? चशन अंतर बहिर, जिसका अंतर और बाहर नहीं है उसको आज बांध रही है, जिसका भीतर बाहर नहीं है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जिनके पेट में है आज उनको बाहर कर रहे हैं, उनका पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा ये सब नहीं, ऊपर और नीचे जिनका नहीं है, सब उनके विश्व उनके अंदर है, आज उनको बांध रही है, जिसका कोई आधार नहीं है, इस जीरो को नहीं बांध सकते कोई, हवा को कोई बांधे तो हवा बन सकती है, तभी भगवान को नहीं बांधा जा सकता। यशोदा बांधने का प्रयास किया, कहा रस्सी लाओ, एक रस्सी लाया यशोदा जी ने, ये खोल करके अपना रेशम की डोरी और कृष्ण को बांधने की, जैसा उखल के साथ में कृष्ण एक खल और ये उदुखल एक दूसरा खल, ये दोनों मिलकर के चोरी कर रहे थे, इसलिए कृष्ण जैसा चोर है उसको सहायता करने वाला ये ओखल भी वैसे ही चोर है, दोनों को बांध देंगे जिसे कृष्ण ना जा सके। अरे गोवर्धन पर्वत क्या अखिल विश्व ब्रह्मांड जिनके श्वास पर श्वास में घूम रहा है उसके लिए ओखल उसे रोक सकती है? ये मनुष्य लीला भगवान की है। जो यशोदा जी मूर्ख नहीं थी, शंकर और ब्रह्मा नारद उनके चरणों की धूली को लेने के लिए मचलते हैं, किंतु कृष्ण की जोगमाया लीला ऐसा करा रही, कृष्ण की भगवत्ता भुला दी, यशोदा जी की सर्वज्ञता भुला दी, वे बांधने का प्रयास किया, दो अंगुल कम पड़ गया, एक बार भी नहीं गया। सखियों से कहा जी अपने घर से रस्सी लाओ, गायों को बांध, सारी रस्सी जुटा दी, सी ऑर्डर्ड तो और फ्रेंड्स ब्रिंग द रोप्स फ्रॉम योर होम्स, सब लाया गया, जोड़ती गई रस्सी, लंबी बंधती गई और एक बार भी मैं भी दो अंगुल कम पड़ गया, एक बार भी नहीं बंधी, ऐसा नहीं कि एक बार फेटा दे दिया फिर दूसरा, एक बार भी नहीं बंधी, सारी गोकुल की रस्सी आ गई मिलकर के मीलों लंबी हो गई, कृष्ण की कमर बस इतनी ही लंबी, उसमें यशोदा जी के पहने हुए सोने के आभूषण उसी में कमर पेटी वैसे ही बनी, किंतु नहीं बांध सकी। दोपहर हो गया, सखियां ताली बजाने लगी, अरे यशोदे ये क्या कर रही है, जिसके ललाट में बंधन है उसको तू बांधने जा रही है, मत बांधो छोड़ दो, यशोदा के हमारे पेट से निकला है, मैं इसे नहीं बांध सकती, मैं जरूर बांधूंगी, आज मैं नहीं बांधूंगी, कल नहीं परसों नहीं किंतु बरसों तक मैं बांध करके ही खाऊंगी वो पीऊंगी, नहीं तो पानी भी नहीं लूंगी। परिश्रम देख करके कृष्ण पसीने के बुंद से तरबर हो गई, मुख विवर्ण हो गए, काजे हे नारायण अपने बेटे को मैं बांध नहीं सकती, सखियों को क्या मुक्ति खिलाऊंगी, हे नारायण मैं तुम्हारे शरण। ज्यों ही आशय कहा, यह नारायण कौन है, कृष्ण ही। बस इनको दया आ गई, कृपया सबंधने, कृपा पूर्वक उसके बंधन में आ गए। अपने आप पहले वाले रेशम की डोरी ही से वो बंध गए और बाकी सब वो रस्सी धरी रह गई। कैसे बंधे, प्रेम से, जिनके अंदर में प्रेम है, दोज हु हैव लव अफेक्शन दे कैन बाइंड कृष्ण बाई कर्म योग तपस्या व्रत होन साध्याय संयम दान व्रत, नहीं बंधेंगे। इस बात को ठीक रखो, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण की हूं, कृष्ण का मैं हूं, ऐसा भाव जिसके अंदर में आ गया वो तो अपने प्रेम से कृष्ण को बांध सकता है। कृष्ण को भूख नहीं किंतु प्रेम की भूख है, वो प्रेम से ही बंधे जा सकते हैं। अन्यथा ने विदुर के घर में शाक खाया, केले, दुर्योधन के घर में गए मेवे सब त्याग दे करके, विदुरानी के घर में गए, विदुर नहीं थे, थी विदुरानी घर में, और मैया मुझे बड़ी भूख लगी है, विदुरानी दौड़ करके कबाट खोल करके घर में बैठाया, घर में और तो कुछ थे नहीं, केवल केवल केले थे, केले के छिलके उतार कर प्रेम के मारे में गदगद हो गई, भूल गई, छिलके कृष्ण को खिला रही और गुदे को फेंक रही। इतने में विदुर घर आए, लहरी ये क्या कर रही, छिलके दे रही है और खाने की चीज को फेंक रही है, होश नहीं है। उसके हाथ से केले ले लिए और छिलके निकाल करके वो, फिर विदुर कृष्ण ने कहा, भाई इसमें वो रस नहीं जो रस आवना, जो रस होता है प्रेम में वो मिठास, इसमें तुम्हारे इस देने में मिठास नहीं रही। बड़ी भूख लगी राम को, कहां गए,
शबरी के घर।
उसके घर में क्या रखा है, ऋषियों को छोड़ दिया, ब्रह्मज्ञानियों को छोड़ दिया, महर्षियों को छोड़ दिया, ही लेफ्ट ऑल ब्रह्मज्ञानी महर्षिज एंड ऑल अदर्स, ही वेंट टू शबरी, अनटचेबल, जो अछूत, जो कोई छूता नहीं, और वो भी बूढ़ी, सुंदरी भी नहीं। और उस बूढ़ी के घर में गए, वो रोज प्रतीक्षा करती, आज हमारे आराध्य नाम आएंगे, फूलों से रास्ते को सजाती। ही यूज टू, ही वॉज वेटिंग फॉर कृष्ण फ्रॉम लॉन्ग टाइम्स, फ्रॉम इयर्स एंड इयर्स, ही यूज टू ड्रेस डेकोरेट हर वे, कृष्ण वे, राम्स वे, राम आएंगे और पके पके मीठे फल जूट दे करके, कौन सा फल मीठा है उसको रखती, राम सबको छोड़ करके उसके घर में लाए और उसके जूठे बेर खाए। वो प्रेम के भूखे और किसी के नहीं। यशोदा जी आज उस प्रेम के द्वारा कृष्ण को बांध लिया, वो बंध गए। इसलिए कहते हैं नेमन भ्रंचो न भवो नस सिर्फ अंग संशया प्रसाद अम्ले भेरे गोपी जत प्राप्त विमुक्तिदा। कृष्ण मुक्ति देने वाले हैं, मुक्ति भी संसार से दे देंगे, किंतु भक्तों का उस मुक्ति से क्या संबंध है, मुक्ति को वो एकदम बेकार का समझते हैं, मुक्ति को वो घृणा करते हैं। वैष्णव लोग, संत लोग, वल्लभाचार्य इत्यादि जितने हमारे भक्त लोग हुए हैं, राम हमारे चैतन्य महाप्रभु, ये बहुत घृणित चीज है। मुक्ति में कोई आनंद नहीं है, क्यों, मधु के ऊपर में मधुमक्खी बैठती है उसका मधु लेने के लिए, और यदि मधु उसमें लिपट करके, मधुमक्खी और उसमें लिपट करके मर जाए और वो भी मधु हो जाए तो उसका राशा साधन कैसे करेगी, क्योंकि वो तो मधु बन गई। उसी प्रकार से भगवान में मिलने के लिए अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलविदं ब्रह्म, ये छोड़ो, ये प्रादेशिक वाक्य है, इसमें कोई रस नहीं। कृष्ण यह रस स्वरूप है, कृष्ण की सेवा करके उसका रसास्वादन बात्सल्य सख्य और बात्सल्य और मधुर रूप में करो। गोपियों ने जैसे कृष्ण की सेवा की, इसमें आनंद ही आनंद है, मुक्ति में आनंद नहीं है। वो तो पत्थर का टुकड़ा कर दो तो भी नहीं, और उसको मधु में डुबा दो तो भी उसको रसास्वादन नहीं। इसलिए ब्रह्म बनने की चेष्टा मत करो, अहम ब्रह्मास्मि शिवम शिवहम मत करो, खबरदार मत करो, शिवहम दासो हम, मैं शिव का दास हूं कहो। यदि शिव हम कहेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। पार्वती जी बड़ी भयंकर हैं, कभी कभी दुर्गा हो जाती हैं, देखना यहाँ पर दुर्गा हुई है, और क्या करती हैं, हाथों में खड़ग लेकर जो शिवम शिवम है उनको ही काट करके माला पहना करके शंकर को दे देती है। क्यों, अरे कल तक तो तुम हमको मैया मैया करा था, माँ माँ कर रहा था, और आज मुझे यदि तू शंकर हो जाएगा तो मैं तेरी स्त्री बन जाऊंगी, बामा बामा बन जाऊंगी, नहीं मैं सदा तेरी मैया हूं, मैया रहूंगी, मैया कभी भी अर्धांगनी नहीं बनती, यह संभव है। इसलिए उनका गला रुंध मला काट करके शंकर जी के गले में दे देती है। इसलिए इस चीज को समझना चाहिए, स्वयं नहीं कह करके दास हो हम कहिए, शंकर जी को गुरु मानिए, पार्वती जी को गुरु मानिए, और उनके आराध्य राधा कृष्ण और रामचंद्र जी हैं। काशी में सबको राम नाम दे करके मुक्ति देते हैं। यही राम वृंदावन में बलराम नहीं बल्कि ये कौन है, राधा रमन राम, राधा रमन हरि गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमन हरि गोविंद, राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय रमन हरि गोविंद, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे राधे जय जय श्री। इसलिए कृष्ण प्रेम के द्वारा यहाँ पर बन जाएंगे, हमारे अंदर में भी वो प्रेम है, अभी विषयों में लगाया हुआ है, विषयों से निकालो और कृष्ण में लगा दो, बस यही करना है। विषय में जैसे हमारी प्रीति प्रेम है उसको निकाल करके धीरे धीरे, आज न तो कल तो निकलेगा ही भाई, छोड़ना इस संसार, इसलिए आज ही क्यों देरी क्यों कर रहे। इसलिए बोलो श्री कृष्ण चैतन्य,
हम तीन दिन से प्रत्युष स्वामी जी का दर्शन कर रहे हैं, स्वामी जी की हम वाणी सुन रहे हैं, मैं ऐसा महसूस कर रहा है कि हम वृंदावन में हैं और वृंदावन का दर्शन करके स्वामी जी ने करा है, तो हम सनातन मंदिर की ओर से पूरे स्वामी जी का आपको दावाही है कि उन्होंने हमें तीन दिन के लिए ये प्रसाद सत्संग प्रसाद यहाँ से सनातन मंदिर में आप सबको दिया, इसलिए हम सनातन मंदिर की ओर से आप सबको आभारी है, प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि पूज्य स्वामी जी आपको यहाँ भविष्य दे और ये धर्म प्रचार का जो कार्य आप कर रहे हैं विश्व में वो जारी रखे, ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। हमारे सनातन मंदिर की प्रणालिका के मुताबिक हम पूज्य स्वामी जी का यहाँ सत्कार विधि करेंगे, तो हमारे पुजारी श्री अशोक भाई को मैं बताता हूँ कि हम जो जाके साथ हमारे प्रेसिडेंट से दुल्लभ भाई पटेल का भी करेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट दुल्लभ भाई जो शब्द
ओम अज्ञान तिमिरांगस्यंजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अक्षत गुरु देव।
Before we leave for Prashadam, I request our President Durga Patel to welcome the family and to accept the blessing. Thank you. Durga Patel. Thank
you, Swamiji. कृष्ण कृष्ण and then you speak.